आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज की संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। केंद्रीय लिबरल पार्टी आज अपनी बैठक में ये तय करेगी कि नेट जीरो जलवायु नीति पर उनका रुख क्या रहेगा। सहयोगी पार्टी नेशनल्स पहले ही इस जलवायु उत्सर्जन लक्ष्य को खारिज कर चुकी है। लिबरल पार्टी के सांसद एंड्रू हेस्टी ने मांग की है कि पार्टी नेट जीरो लक्ष्य पर दोबारा आम चुनाव यानी डबल डिसोल्यूशन इलेक्शन करवाने की पहल करे, जबकि कई मॉडरेट नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी ने नेट जीरो नीति छोड़ी तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बीच लिबरल पार्टी के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मामलों के सहायक मंत्री जॉन विल्सन ब्राजील में चल रहे जलवायु सम्मेलन COP30 में शामिल हैं। उन्होंने SBS से कहा कि इस मुद्दे पर लिबरल पार्टी की अंदरूनी बहस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं लिबरल पार्टी के वरिष्ठ नेता एलेक्स हॉक ने नेट जीरो नीति पर बुलाई गई पार्टी बैठक को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एकजुट होकर यह फैसला करना जरूरी है कि क्या वे 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को कुछ हद तक कमजोर कर सकती है। हालांकि सरकार में वापसी की स्थिति में वे कार्बन प्रदूषण घटाने की दिशा में कुछ न कुछ लक्ष्य बनाए रखेगी। एलेक्स हॉक का कहना है कि अगर पार्टी स्कॉट मॉरिसन के दौर का ये लक्ष्य छोड़ देती है तो आलोचक शहरी इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी पर निशाना साधेंगे। दूसरी ओर विक्टोरिया सरकार इस साल संसद सत्र के अंत तक अडल्ट टाइम फॉर वायलेंट क्राइम नामक नया कानून लाने जा रही है। इस प्रस्ताव के तहत हिंसक अपराध का आरोप होने पर 14 साल की उम्र के बच्चों पर भी वयस्क अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। क्वींसलैंड की LNP सरकार ने 2024 के राज्य चुनाव जीतने के बाद इसी तरह का कानून लागू किया था। विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलंग ने कहा कि ये कदम अपराध पीड़ितों से बातचीत के बाद उठाया गया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत स्पष्ट संदेश देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हिंसक अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले। वहीं रियल एस्टेट वेबसाइट डोमेन के नए आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का अंतर लगातार बढ़ रहा है। खासकर शहरों के भीतर के इलाकों में घर सबसे ज्यादा महंगे हो रहे हैं। डोमेन की मैचिंग डिमांड रिपोर्ट के मुताबिक सभी राजधानी शहरों में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित घरों की कीमतें खरीदारों के बजट से कहीं अधिक हैं। कैनबरा के इनर रिंग में ये अंतर सबसे बड़ा देखा गया, औसत बजट से लगभग $7,12,000 तक ऊपर। इनर सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में भी अंतर $3,00,000 से अधिक तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सिडनी एकमात्र ऐसा शहर है जहां बिक्री के लिए उपलब्ध घरों की कीमतें खरीदारों के औसत बजट से कुछ कम है। दूसरी ओर फेडरल अदालत में नॉर्थ मेलबर्न क्षेत्र का एक ऐतिहासिक नेटिव टाइटल मामला सामने आया है। वुरुंजरी वोईवुरुंग समुदाय की ओर से किया गया ये दावा ग्रेटर मेलबर्न क्षेत्र में लगभग 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर ये मंजूर हो जाता है तो ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत इस समुदाय के पारंपरिक भूमि और जल अधिकारों को मान्यता मिल जाएगी। वुरुंजरी वोईवुरुंग समुदाय की सदस्य मार्गरेट परीसी ने इसे अपने समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये उनकी ऑस्ट्रेलिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच साझा सुरक्षा पर एक नए द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया संस्थान की चेयर लिडिया सेंटोसो SBS इंडोनेशियन से कहती हैं कि राष्ट्रपति प्रबोवो की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में आ रहे सकारात्मक बदलावों को दर्शाती है। और अब अंत में खबरें भारत से। दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अपने हाथ में ले ली है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात केस से जुड़ी सभी दस्तावेज और FIR की प्रति NIA को सौंप दी थी। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने मौके से करीब 40 नमूने इकट्ठे किए हैं, जिनमें 2 कारतूस और अलग अलग प्रकार के विस्फोटकों के अवशेष शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में एक विस्फोटक के अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना जताई गई है, जबकि दूसरा उससे अधिक प्रभावशाली बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उसकी सटीक संरचना की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद होगी। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे लगातार जांच एजेंसियों से संपर्क में हैं और सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। फिलहाल एनआईए ये जांच कर रही है कि विस्फोट किसी साजिश का हिस्सा थे या विस्फोटक ले जाते समय कोई हादसा हुआ था। जांच एजेंसियां दोनों घटनाओं के संभावित संबंधों की पड़ताल में जुटी हैं। इसी के साथ 12 नवंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।